नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। टारगेटेड ब्रिटनी काइजर का संस्मरणात्मक खोजी वृत्तांत है, जिसमें वे कैम्ब्रिज एनालिटिका के भीतर अपने अनुभवों के माध्यम से राजनीतिक डेटा उद्योग की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती हैं। पुस्तक का केंद्र यह प्रश्न है कि सोशल मीडिया से प्राप्त निजी जानकारी को मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से जोड़कर चुनावी संदेशों को कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है। काइजर पहले प्रगतिशील राजनीति और मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़ी थीं, फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका की व्यावसायिक विकास निदेशक बनी और अंततः कंपनी के खिलाफ जानकारी देने वाली प्रमुख आवाजों में शामिल हुईं। वे कंपनी के कारोबारी दावों, राजनीतिक ग्राहकों, फेसबुक डेटा विवाद और अपने नैतिक परिवर्तन को एक साथ रखती हैं। पुस्तक केवल डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान या ब्रेक्सिट की बहस का इतिहास नहीं है, इसका व्यापक उद्देश्य उस अनियंत्रित व्यवस्था की आलोचना करना है, जिसमें डेटा दलाल, डिजिटल मंच और राजनीतिक सलाहकार नागरिकों की जानकारी को प्रभाव के साधन में बदल देते हैं। इसलिए यह एक अंदरूनी गवाही भी है और डिजिटल अधिकारों व लोकतांत्रिक जवाबदेही के पक्ष में तर्क भी। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, व्यवहारगत सूक्ष्म लक्ष्यीकरण, मतदाता को समूह नहीं व्यक्ति की तरह देखना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार व्यवहारगत सूक्ष्म लक्ष्यीकरण है। काइजर के अनुसार, कैम्ब्रिज एनालिटिका मतदाताओं को केवल उम्र, आय, स्थान या पार्टी पहचान जैसे पारंपरिक वर्गों में नहीं बांटना चाहती थी। उसका दावा था कि उपलब्ध डेटा सर्वेक्षणों और व्यक्तित्व संबंधी संकेतों के आधार पर लोगों की चिंताओं, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और संदेश ग्रहण करने की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर एक ही उम्मीदवार या मुद्दे के लिए अलग अलग लोगों तक अलग भाषा, अलग भय, अलग आश्वासन या अलग प्राथमिकता वाला संदेश पहुंचाया जाता है। इस पद्धति की राजनीतिक समस्या केवल विज्ञापनों का निजीकरण नहीं है। सार्वजनिक चुनावी बहस में सामान्यतः सभी नागरिकों के सामने लगभग एक जैसी अपील और वादे रखे जाते हैं, जिनकी पत्रकार, प्रतिद्वंद्वी और मतदाता जांच कर सकते हैं। इसके उलट, अत्यंत निजी डिजिटल संदेश अक्सर अदृश्य रहते हैं। किसी व्यक्ति को अपराध का भय दिखाने वाला संदेश मिल सकता है, दूसरे को आर्थिक अवसर का और तीसरे को व्यवस्था के प्रति अविश्वास का। अभियान की समग्र भाषा तब सार्वजनिक जांच से बच सकती है। काइजर इस प्रक्रिया को बार बार संदेश पहुंचाने, प्रतिक्रिया मापने और सामग्री बदलने वाली प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती है। पुस्तक यह सावधानी भी जरूरी बनाती है कि किसी तकनीक के प्रभाव के बड़े दावे को चुनाव परिणाम का अकेला कारण नहीं मानना चाहिए। फिर भी सूक्ष्म लक्ष्यीकरण मतदाता की कमजोरियों और ध्यान को राजनीतिक संसाधन बना देता है और इसी कारण पारदर्शिता तथा सहमति का प्रश्न केंद्रीय हो जाता है। दूसरा, फेसबुक डेटा विवाद ने सहमति की सीमाएं उजागर की। टारगेटेड में फेसबुक डेटा विवाद एक बुनियादी संरचनात्मक विफलता के रूप में उभरता है। पुस्तक उस दौर का वर्णन करती है जब एक क्विज ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं और उनके फेसबुक संपर्कों से जुड़ी जानकारी व्यापक पैमाने पर एकत्र की गई। बाद की सार्वजनिक जांचों में लगभग 87 लाख खातों तक प्रभावित होने का अनुमान चर्चित रहा। काइजर की चिंता केवल इस संख्या से नहीं है, बल्कि उस डिजिटल सहमति से है जिसे उपयोगकर्ता अक्सर समझ ही नहीं पाते। किसी ऐप को अनुमति देना सामान्य उपयोगकर्ता को मामूली कदम लग सकता है, पर मंच की डिजाइन, गोपनीयता नीति और तीसरे पक्ष तक डेटा के प्रवाह का ढांचा ऐसा हो तो एक व्यक्ति की अनुमति उसके मित्रों की जानकारी तक भी पहुंच का माध्यम बन सकती है। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि कानूनी भाषा में दर्ज सहमति और वास्तविक सूचित सहमति अलग चीजें हैं। नागरिक को यह जानना चाहिए कि कौन सा डेटा लिया जा रहा है, किस उद्देश्य से, कितने समय के लिए और किन संगठनों को दिया जाएगा। काइजर डेटा दलाली की व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाती हैं। अलग अलग स्रोतों से खरीदी, जोड़ी और विश्लेषित की गई जानकारी व्यक्ति का ऐसा विस्तृत प्रोफाइल बना सकती है जिसे वह स्वयं भी नहीं देख पाता। पुस्तक का नीतिगत निष्कर्ष यह है कि प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी केवल डेटा चोरी के बाद माफी मांगना नहीं हो सकती। उसे संग्रह की सीमा, स्पष्ट विकल्प, स्वतंत्र निगरानी और प्रभावी हटाने के अधिकार जैसी व्यवस्थाएं अपनानी होंगी। इस तरह निजी गोपनीयता को लोकतांत्रिक भागीदारी से जोड़ा गया है। तीसरा, कैम्ब्रिज एनालिटिका के भीतर आदर्शवाद, लाभ और नैतिक समझौते। काइजर अपनी कहानी को केवल कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र की तरह नहीं लिखती, वे यह भी बताती हैं कि मानवाधिकार और प्रगतिशील राजनीतिक काम से आई एक पेशेवर ऐसी संस्था तक कैसे पहुंची जो डेटा और रणनीति को पहले उपयोगी तथा आधुनिक राजनीतिक औजार के रूप में प्रस्तुत करती थी। यह आत्मकथात्मक पक्ष पुस्तक को नैतिक निर्णयों की क्रमिक प्रकृति समझने में मदद देता है। बड़े उल्लंघन हमेशा शुरुआत में स्पष्ट अपराध जैसे दिखाई नहीं देते, वे आकर्षक भाषा, महत्वाकांक्षी दावों तेज पेशेवर उन्नति और सीमित जिम्मेदारियों के बीच सामान्य काम की तरह दिख सकते हैं। उनके विवरण में कैम्ब्रिज एनालिटिका केवल विश्लेषण बेचने वाली फर्म नहीं थी, वह डेटा, रणनीति, रचनात्मक सामग्री और अभियान प्रबंधन को एक साथ बेचने का दावा करती थी। इस समेकित मॉडल में व्यावसायिक सफलता का दबाव अधिक ग्राहकों, अधिक डेटा और अधिक निर्णायक परिणामों की मांग पैदा करता है। ऐसे माहौल में कर्मचारी किसी परियोजना के नैतिक परिणाम से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिस्से को तकनीकी या बिक्री संबंधी कार्य मानता है। पुस्तक का मूल्य इसी असुविधाजनक आत्म परीक्षण में है। काइजर अपनी भागीदारी और बाद के विरोध के बीच तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती, और समीक्षकों ने उनके आत्मचित्रण पर प्रश्न भी उठाए हैं। फिर भी यह सीमा उपयोगी है, क्योंकि पाठक को विस्लब्लोअर की गवाही को सहानुभूति के साथ पर आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना सिखाती है। संस्थागत दुरुपयोग अक्सर किसी एक दुष्ट व्यक्ति से नहीं, प्रोत्साहनों, चुप्पियों और सुविधाजनक तर्कों के मेल से बनता है। चौथा, ट्रंप और ब्रेक्सिट के संदर्भ में निजी राजनीतिक संदेशों की लोकतांत्रिक चुनौती। पुस्तक कैम्ब्रिज एनालिटिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव और ब्रिटेन की ब्रेक्सिट राजनीति से जोड़ती है। काइजर अपने प्रत्यक्ष अनुभव, बैठकों और दस्तावेजों के आधार पर कंपनी की चुनावी महत्वाकांक्षाओं तथा राजनीतिक नेटवर्कों का वर्णन करती हैं। यह संदर्भ पुस्तक को तकनीकी गोपनीयता की बहस से आगे ले जाता है।
ओ,
प्रश्न यह बनता है कि जब राजनीतिक संचार का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत डिजिटल फीड में छिपा हो, तो चुनाव में समान सूचना और साझा बहस की शर्त कैसे बचाई जाए। यहाँ जरूरी विश्लेषणात्मक सावधानी है। किसी एक सलाहकार कंपनी या डेटा तकनीक को ट्रंप की जीत अथवा ब्रेक्सिट परिणाम का पूर्ण कारण कहना इतिहास को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा। आर्थिक असंतोष, दलगत ध्रुवीकरण, मीडिया वातावरण, उम्मीदवारों की रणनीति और लंबे सामाजिक संघर्ष भी निर्णायक कारक थे। काइजर की पुस्तक का अधिक ठोस योगदान यह दिखाना है कि डेटा आधारित राजनीतिक प्रभाव का बाजार स्वयं को किस तरह बेचता था, किन परिणामों का वादा करता था और किस प्रकार नागरिकों को प्रेरित या हतोत्साहित करने योग्य खंडों में बदला जाता था। लोकतंत्र के लिए चिंता संदेश की मनाने वाली शक्ति भर नहीं, उसकी जवाबदेही है। यदि अभियान अलग अलग समुदायों को परस्पर विरोधी दावे भेजे, संवेदनशील लोगों को निराशा के आधार पर मतदान से दूर करे या भावनात्मक सामग्री को तथ्यात्मक जांच से बचाए, तो सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ता है। पुस्तक चुनावी विज्ञापनों के अभिलेख, प्रायोजकों की स्पष्ट पहचान और स्वतंत्र नियमन की जरूरत को इसी पृष्ठभूमि में रखती है। अंत में विस्लब्लोइंग के बाद डेटा अधिकार और नियमन का प्रस्ताव, टारगेटेड का अंतिम बौद्धिक रुख निराशा पर समाप्त नहीं होता। काइजर कैम्ब्रिज एनालिटिका से अलग होने और जांचकर्ताओं, पत्रकारों तथा संसदीय प्रक्रियाओं के साथ सहयोग के बाद डेटा अधिकारों के पक्ष में तर्क देती हैं। उनका मुख्य दावा है कि व्यक्तिगत डेटा को कंपनियों की बिना रोक टोक संपत्ति मानना गलत है। व्यक्ति को यह जानने, नियंत्रित करने और कुछ स्थितियों में हटवाने का अधिकार होना चाहिए कि उसके डिजिटल व्यवहार से कौन सी जानकारी बनाई और इस्तेमाल की जा रही है। पुस्तक कानूनी निगरानी को लोकतंत्र की सुरक्षा का आवश्यक हिस्सा मानती है। व्यवहार में इसका अर्थ राजनीतिक विज्ञापन की पारदर्शिता, डेटा संग्रह की स्पष्ट सीमा, सार्थक सहमति, तीसरे पक्ष की जवाबदेही और नियम तोड़ने पर प्रभावी दंड हो सकता है। यह दृष्टि तकनीक विरोधी नहीं है। काइजर स्वयं डेटा के मानवीय उपयोग की संभावनाओं से आकर्षित होकर इस क्षेत्र में आई थीं। उनका तर्क यह है कि तकनीक की क्षमता तभी वैध है जब उसके उपयोगकर्ता और प्रभावित नागरिक दोनों के अधिकार सुरक्षित हों। इस भाग को पढ़ते समय पाठक को काइजर के समाधान प्रस्तावों और उनके बाद के डिजिटल संपत्ति तथा ब्लॉकचेन समर्थन को अलग अलग कसौटियों पर परखना चाहिए। ब्लॉकचेन अपने आप में गोपनीयता, समानता या जवाबदेही की गारंटी नहीं देता, फिर भी पुस्तक का स्थायी आग्रह मजबूत है। डेटा शासन को केवल नवाचार या उपभोक्ता सुविधा का मामला नहीं समझना चाहिए। यह शक्ति के वितरण का प्रश्न है, क्योंकि अनुमान लगाने और प्रभावित करने की क्षमता कुछ कंपनियों तथा राजनीतिक संगठनों के हाथ में केंद्रित हो सकती है। निष्कर्ष में टारगेटेड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो चुनावी राजनीति, सोशल मीडिया, गोपनीयता कानून, डिजिटल विज्ञापन या तकनीकी नैतिकता को एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं के रूप में समझना चाहते हैं। पत्रकारिता, नीति निर्माण, नागरिक समाज, अभियान प्रबंधन और तकनीक क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसमें डेटा आधारित राजनीतिक परामर्श के व्यावसायिक तर्क का सुलभ अंदरूनी चित्र मिलता है। सामान्य पाठक के लिए भी यह पुस्तक डिजिटल अनुमति, लक्षित विज्ञापन और निजीकरण के रोजमर्रा के अनुभवों को नए प्रश्नों से देखने का आधार देती है। इसकी सबसे अलग विशेषता काइजर की स्थिति है। वे बाहरी शोधकर्ता नहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका की पूर्व व्यावसायिक विकास निदेशक थीं, इसलिए वे कंपनी के प्रस्तुतीकरण, ग्राहक संबंधों और आंतरिक संस्कृति के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत करती हैं। इसी निकटता के कारण पुस्तक में एक सीमा भी है। लेखक अपनी भूमिका को कैसे समझाती हैं, इसे आलोचनात्मक नजर से पढ़ना चाहिए। कुछ समीक्षकों ने उनके आत्मौचित्य और ब्लॉकचेन को समाधान के रूप में देखने पर संदेह जताया है। फिर भी यही तनाव पुस्तक को साधारण तकनीकी चेतावनी से अधिक जटिल बनाता है। यह दिखाती है कि डेटा दुरुपयोग किसी दूरस्थ हैकर की कहानी नहीं, बल्कि मंचों, सलाहकारों, निवेशकों, अभियानों और पेशेवर महत्वाकांक्षाओं से बनी व्यवस्था का परिणाम हो सकता है। समान विषय की अन्य पुस्तकों की तुलना में इसका बल विस्तृत अंदरूनी दृष्टि और व्यक्तिगत नैतिक उलझन पर है। इसे अंतिम निर्विवाद इतिहास नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण गवाही और डेटा शक्ति पर गंभीर सार्वजनिक बहस के दस्तावेज के रूप में पढ़ना सबसे लाभकारी रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रिटनी काइजर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।